समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में होंगे मुख्य समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक।
हेलो आकर्षिता, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता सिंह। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with his Polish counterpart Donald Tusk in Warsaw.
विदेश मंत्रालय ने त्रिपुरा में गुमती नदी पर बांध खोलने के कारण बांग्लादेश में बाढ़ की खबरों को खारिज किया।
Terrorism is a global threat for peace and development, says India at UN, calls for comprehensive international anti-terrorism convention.
दिल्ली पुलिस ने अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 3 राज्यों में से 14 लोगों को हिरासत में लिया।
फर्स्ट मीटिंग ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वाफ अमेंडमेंट बिल 2024 बिगिंस इन न्यू दिल्ली।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किये।
And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief. And you know, Akarshita, Nelson Mandela very famously said, "No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite." Well, great words there by Nelson Mandela. And the General Assembly in its resolution designated 22nd August as the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief. This is done to recognize the importance of providing victims of acts of violence based on religion or belief and members of the family with appropriate support and assistance in accordance with applicable law. The day comes right after the International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism on 21st of August.
संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 22 अगस्त को धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। ये दिन धार्मिक हिंसा या विश्वास के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित हिंसा और आतंकवाद को लक्षित करने वाले कार्यों की कड़ी निंदा करने के लिए मनाया जाता है। ये धार्मिक या विश्वास की स्वतंत्रता से संबंधित मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के हिस्से के रूप में धार्मिक उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता करने के महत्व पर जोर देता है। इसे पहली बार 2019 में आधिकारिक तौर पर बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उनके धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा की सभी कृत्यों की कड़ी निंदा की है, साथ ही उनके घरों, व्यवसायों, संपत्तियों, स्कूलों, सांस्कृतिक केंद्रों या पूजा स्थलों के ऊपर हमलों की कड़ी निंदा करता है। ऐसे धार्मिक स्थानों, स्थलों और तीर्थ स्थलों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना धर्म संप्रदाय चुनने का अधिकार है। धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा कोई नई घटना नहीं है, न ही ये सिर्फ एक आस्था परंपरा तक ही सीमित है। आज धार्मिक उत्पीड़न बढ़ रहा है और हर 3 में से 1 व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित है।
Yes, and the causes of religiously motivated violence, however, have taken on new importance in the modern age, Akarshita, particularly with its connection to the recent acts of terrorism and social violence. Extremism, authoritarianism, terrorism, and conflict-driven hatred are yet not eradicated. Too many people across the world, especially from religious minorities, face attacks to their communities and see the human rights violated due to their actual or perceived faith.
हाल के वर्षों पर नजर डालें तो धर्म या विश्वास पर आधारित हिंसा एक बढ़ती हुई समस्या है जो मानवता के खिलाफ अपराधों युद्ध अपराधों और यहां तक कि नरसंहार की कानूनी परिभाषा की सीमा को पार कर जाती है। इस दिन को मनाने से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि हिंसा का कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं है चाहे कोई एक घटना हो या हिंसा के कार्य जो व्यवस्थित हों या बड़े पैमाने पर किए गए हों।
Yes, absolutely. And a previous resolution establishing the International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism also recognized that working together to enhance the implementation of existing legal regimes that protect individuals against discrimination and hate crimes, increasing inter-religious, interfaith and intercultural efforts and expanding human rights education are important first steps in combating incidents of intolerance, discrimination and violence against individuals on the basis of religion or belief.
धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करके संयुक्त राष्ट्र ने याद दिलाया कि राज्यों की मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के मानवाधिकार भी शामिल हैं जिससे अल्पसंख्यक अपने धर्म या विश्वास का स्वतंत्र रूप से पालन कर सकें।
Freedom of religion or belief, freedom of opinion and expression, the right to peaceful assembly, and the right to freedom of association are interdependent, interrelated and mutually reinforcing. They are enshrined in Articles 18, 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights. Upholding these rights plays an important role in the fight against all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief.
विचारों की खुली रचनात्मक और सम्मानजनक बहस साथ ही स्थानीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्धार्मिक घृणा उत्तेजना और हिंसा से निपटने में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं जो हम बहसें कर सकते हैं अभिषेक वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक और लोगों को ज्यादा अवेयर कर सकते हैं कि जो है हम एक कभी कभी हो जाते हैं बहुत डॉगमेटिक और डोमिनेटिंग हो जाते हैं हम अपने रिलीजन को लेकर या कभी कभी तो हम इसे डिस्कशन के थ्रू इन सारे टॉपिक्स पे एक जागरूक कर सकते हैं लोगों को
एब्सोल्युटली एंड दे आर कंटिन्यूइंग एक्ट्स ऑफ इंटॉलरेंस एंड वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग persons belonging to religious communities and religious minorities around the world, and the number and intensity of such incidents, which are often of a criminal nature and may have international characteristics, are increasing, and that is why the General Assembly adopted the resolution titled International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, strongly condemning continuing violence and acts of terrorism targeting individuals, including persons belonging to religious minorities, on the basis of or in the name of religion or belief.
सदस्य देशों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी कृत्यों तरीकों और प्रथाओं की इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में चाहे कहीं भी और किसी के द्वारा किया गया हो उनकी प्रेरणा की परवाह किए बिना इसकी निंदा की है और दोहराया है कि आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद जब आतंकवाद उसके सभी रूपों और अभिव्यक्ति में अनुकूल हो तो उसे किसी भी धर्म राष्ट्रीयता सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए
Yes, and the International Committee must unite in fighting against discrimination, hatred and violence based on religion or belief. We must promote a culture of religious tolerance, respect for diversity and mutual understanding.
प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी धर्म या आस्था से जुड़ा हो अपने मानवाधिकारों के लिए पूरे सम्मान का हकदार है हमें नफरत की लहर को रोकने और सहिष्णुता आपसी समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए हजारों निर्दोषों लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं चूंकि आतंकवाद ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है इसलिए विश्व नेताओं को एकजुट होकर इस खतरे से लड़ने की जरूरत है जो मानवता के लिए खतरा है
Yes, absolutely, Akarshita. And to conclude our discussion on this topic here today, violence, whether to the self, to the other, or to the planet, has no place in any religion. And today, as we honor and remember the victims, let us reaffirm our commitment to creating a world where everyone, regardless of their religion or beliefs, can live free from fear, stigma, and persecution.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
यस एंड आकर्षिता, फूड इज अ बेसिक नीड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, बट अर्बन पुअर आर डिप्राइव फ्रॉम द बेसिक फूड एंड मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर मेल नरिश्ड एंड हैव बिकम बेगर्स ड्यू टू हंगर, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ फूड। एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज रीइंट्रोड्यूस एनटीआर अन्ना कैंटीन scheme in Andhra Pradesh on the occasion of Independence Day so as to provide food at the subsidized prices to the urban poor. And thus I just like to add here that we even have an Anna in a canteen downstairs.
Ji.
But he's not from Andhra Pradesh, he's from Tamil Nadu.
Right.
These canteens provide the breakfast, lunch and dinner at its premises. It is 5 rupees for each meal. Urban poor have the breakfast, lunch and dinner sufficiently with only 15 rupees. One can avail food items as like idli, sambar, puri, rice, dal, curry. All of these that people can avail choose to either tiffin or meals with only 5 rupees. While inaugurating, Chief Minister of Andhra Pradesh Nara Chandrababu Naidu paid tributes to the late Dokka Sitamma, who provided meals to anyone in need and recalled her legacy will continue in Andhra Pradesh. Also, he said 100 Anna canteens reopened on August 15 and by the end of September, 203 will be operational across the state, including in tribal regions. Earlier, Government of Andhra Pradesh started 100 NTR Anna canteens in different urban cities of Andhra Pradesh in July 2018. And this scheme is very useful to the underprivileged, daily wage earners, laborer, unemployed youth, workers in unorganized sectors, people staying in hospitals, etc. People were highly satisfied with these Anna canteens. This scheme is indirectly helping to increase the savings of the urban poor and reduce the malnourishments and increase the health standards of urban poor and unemployed youth. This is Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
आइए अब आपको ले चलते हैं रांची, जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत सदर अस्पताल 500 से अधिक मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस सेवा दे रहा है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता से यह रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने में रांची का सदर अस्पताल हमेशा अव्वल रहा है। सदर अस्पताल रांची ने 500 से अधिक कैंसर मरीजों की मुफ्त डायलिसिस कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की जब बात होती है तो चर्चा रांची के सदर अस्पताल की जरूर होती है। सदर अस्पताल रांची इस योजना के क्रियान्वयन में शुरू से ही अव्वल रहा है। इस अस्पताल ने पिछले 8 महीने से भी कम समय में 500 से अधिक मरीजों के मुफ्त डायलिसिस का एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अस्पताल के डॉक्टर सौरभ बताते हैं कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड होने से उन्हें निःशुल्क इलाज दिया जाता है।
देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ जो भी मरीज आते हैं तो उनको जो भी बीमारी है कैंसर से रिलेटेड, उसका पहले यहाँ डायग्नोसिस हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका आयुष्मान है या नहीं है। आयुष्मान अगर है तो हम नहीं चाहते कि उनका एक भी रुपया लगे और वो आयुष्मान के माध्यम से ही उनका पूरा इलाज हो, चाहे वो दवा 2000 का हो या 5000 का हो, वो दवा मुफ्त में आता है आयुष्मान के माध्यम से।
एक समय था जब मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए बड़े निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो काफी महंगा भी होता था। आयुष्मान भारत योजना निचले तबके के गरीबों के स्वास्थ्य सुरक्षा का कवच बना है। आयुष्मान कार्ड से आम जन में बेहतर इलाज की आशा जगी है। परिक्रमा के लिए रांची से मैं पूनम केरकेट्टा।
A sensory garden for children with sensory processing disorder or autism has been developed on the premises of Ferguson College, Pune. This is the first garden of its kind in Maharashtra, and it will also provide medical treatment guidance. Let's hear more from our correspondent, Manoj.
A child with sensory processing disorder may dislike certain tests or only prefer crunchy foods. The child may enjoy fast food or reject it completely. The child might dislike being hugged or constantly put their fingers in their mouth. Parents may observe that the child only likes soft clothing. These are the symptoms of being hypersensitive or insensitive to touch, sound, height, test or movement. Medically, this condition is called sensory processing disorder, SPD. It can occur on its own or be related to autism. Currently, the prevalence of SPD in India is 1 in 6 children, while the prevalence of autism is 1 in 68. The children with SPD are often delayed in speech and or language. If a child is distracted by discomfort caused by their environment or if they are busy seeking sensations that are not readily available, they are less likely to be able to attend to speech and language learning learning opportunities. Against this backdrop, hypersensitive children need to be desensitized, while insensitive children need to be sensitized. To address this issue, a sensory garden has been developed in the historical Ferguson College of Pune. This garden will provide expert physiotherapist guidance along with opportunities for balancing and walking on various surfaces like hard, smooth and pointed, as well as different types of swings, colored paths and other tools. Exercises will be conducted in the daytime to help balance SPD and self-absorbed senses using these tools. The garden has been developed by Brijlal Jindal College of Physiotherapy in collaboration with Mahavir Enterprises and will surely prove an example to emulate in other parts of the country. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we will talk about Bhikaji Kama, Kosabai Patel and Shoaibullah Khan.
On this day in 1907, Madam Bhikaji Kama raised India's first national flag at Second International Socialist Conference at Stuttgart in Germany. Bhikaji Kama was born on September 24, 1861, in an influential Parsi family. An outstanding lady of great courage, integrity, and passion for freedom, Bhikaji spent most of her time in social work. Madam Kama's intense love for nation made her sacrifice her family life and work tirelessly for the cause of the nation. In October 1896, when the Bombay presidency was hit by famine, and shortly thereafter by bubonic plague, Bhikaji provided care for the afflicted. In 1905, Madam Kama relocated to Paris, where she co-founded the Paris Indian Society. While living in exile in the Netherlands and Switzerland, Kama wrote and published revolutionary literature for the movement, including Bande Mataram and later Madan Stalwar, which was published in response to the execution of Madan Lal Dhingra. On this day in 1907, Kama attended the Second Socialist Congress at Stuttgart, Germany, where she described the devastating effects of the famine that had struck the Indian subcontinent. In her appeal for human rights, equality and freedom from the Great Britain, she unfurled what she called the flag of Indian independence. For this act, she came to be known as the mother of the Indian Revolution. Kama's flag was a modification of the Calcutta flag. It was co-designed by Kama and Vinayak Damodar Savarkar and would later serve as one of the templates from which the current national flag of India was created. Madam Bhikaji Kama was a pioneer amongst those who worked for the freedom of the country from abroad. It was her motto to serve humanity and to raise her voice against any exploitation of fellow beings.
Another interesting fact about today is that on this day exactly 100 years ago, in 1921, Gandhiji made a bonfire of foreign clothes during the non-cooperation movement. Gandhiji called for a campaign of non-cooperation with British rule on 31st August 1920. People were asked to adhere to renunciation of all voluntary association with the British government. Thus, people boycotted schools, colleges, courts and withheld the payment of taxes. It was during this non-cooperation movement that people burnt foreign clothes in public. Acts like these clearly sent a message to the British government that their days in India were limited.
On this day, Gosai Bhai Patel, a freedom fighter from Gujarat, snatched away a rifle from British policeman and hit him with the butt of the gun in protest against the killing of three nationalists in Mathwad. While growing up, though attracted in Gandhian non-violence principle, Gosai Bhai involved in a few violent attacks against British rule. He and his friends successfully attacked a police station and released the captives. He, along with some of his like-minded friends, tried to blow away a railway bridge too, but lack of technological know-how diffused the impact of the explosion.
Patel went on to become a successful politician. He was elected for the Gujarat Assembly thrice. He was also at the helm of Dandi's development. Gosabai became a strong follower of Gandhiism. He has written many books on Gandhiism and was active in social work till the age of 90, despite his failing health. Interestingly enough, on this day in 1639, Madras, now Chennai, was founded by the British East India Company on a sliver of land bought from local Nayak rulers. Later on, Robert Clive built the British Empire from the Madras Presidency. This day, 71 years ago, a patriot and freedom fighter, Shoaibullah Khan, was shot dead on 22nd August 1948 by the Razakars led by Qasim Rizvi. Shoaibullah Khan was the editor of Imroz, the Urdu daily published from Hyderabad. He was in favor of the merger of Hyderabad with the Union of India and opposed Qasim Rizvi's idea of an independent Hyderabad state. On the fateful day, Shoaibullah Khan was shot from behind. Department of Journalism of Osmania University has instituted a gold medal in honor of Mr. Khan for the top student of BCJ.
In business news, domestic benchmark indices ended higher today. The Sensex and the Nifty climbed amid positive global cues, followed the Federal Reserve's policy meeting minutes which indicated a strong likelihood of rate cut next month. At the closing bell, the BSE Sensex closed 147 points, or 0.18% higher, at 81,053. The NSE Nifty also ended up by 41 points, or 0.17%, at 24,811. The BSE Mid-Cap and Small-Cap indices rose around 0.5% each.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. दो बार के ओलंपिक्स पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज रात स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित लुसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भाग लेंगे. 26 वर्षीय नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रजत पदक जीतने के बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं. और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. आज कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद यू आर अनंतमूर्ति की पुण्यतिथि है. उन्हें कन्नड़ साहित्य के नव्य आंदोलन का प्रणेता माना जाता है. उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना संस्कार है और उनकी मुख्य रचनाएं हैं संस्कार, बावली, सन्निवेश आदि. साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है.
Konidela Chiranjeevi, born Konidela Shivashankara Vara Prasad, was born on this day in 1955. He is an actor, politician and philanthropist known for his work in Telugu cinema. He is widely regarded as one of the most successful and influential actors in the history of Indian cinema. Chiranjeevi holds the record for the most industry hits in Telugu cinema, with 8 films emerging as the top grosser. Grossers of the time are record unmatched in the industry's 100-year history. He has received numerous honors, including the Padma Bhushan in 2006 and the Padma Vibhushan in 2024 from the Government of India, as well as the IFFI Indian Film Personality of the Year Award in 2022. His other accolades include the Raghupati Venkaya Award, 3 Nandi Awards and 9 Filmfare Awards South, including the Lifetime Achievement Award. And in 2013, CNN-IBN recognized him as one of the men who changed the face of Indian cinema.
जी हाँ, उन्होंने अपनी फिल्मों में एक ऐसे अभिनेता का पात्र निभाया है जो गरीब और आम लोगों को बचाता है. उनकी बहुत ढेर सारी मुख्य जो है फेमस फिल्में हुई हैं, जिनमें स्वयं, कुर्शी, रुद्वीना, शंकर, दादा, जिंदाबाद आदि हैं. आइए सुनते हैं उनका ये गीत.
मैं दीवाना आवारा बादल गलियों में फिरता हूं, मैं मारा मारा.
जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण. छाया मत छूना मन होगा दुख दूना मन। जी हां, एक कवि, नाटककार, समलोचक के रूप में जाने जाने वाले गिरिजा कुमार माथुर की आज जयंती है। लंबे अरसे तक इन्होंने आकाशवाणी की सेवा की। इनकी कविता में रंग, रूप, रस, भाव तथा शिल्प के नए नए प्रयोग हैं। उनके मुख्य काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, मंजीर, धूप के धान, शिला पंख, चमकीले, जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान आदि। गिरिजा कुमार माथुर की मैं वक्त के हूं सामने नामक काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
Dua Lipa was born on this day in 1995. She is an English and Albanian singer and songwriter. Her accolades include 7 Brit Awards and 3 Grammy Awards. Time magazine included her in its list of the 100 most influential people in the world in 2024. Levitating, a hit track topped the Billboard Year-End Hot 100 chart of 2021 and was certified diamond in the US by the Recording Industry Association of America. Let's listen to it.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
आत्मविश्वास कई प्रकार का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। जी हां, आज हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंगकार हरिशंकर परसाई की जयंती है। वे हिंदी के एक ऐसे पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजक की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों की खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। उनकी मुख्य रचनाएं हैं तब की बात और थी, बेईमानी की परत, भोला राम का जीव, विकलांग श्रद्धा का दौर, ज्वाला और जल आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान और शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
He was an American author and screenwriter, one of the most celebrated 20th century American writers. He worked in a variety of genres including fantasy, science fiction, horror, mystery, and realistic fiction. Bradbury is best known for his novel Fahrenheit 451 in 1953 and his short story collections The Martian Chronicles in 1950, The Illustrated Man 1951, and The October Country 1955. Other notable works include the coming-of-age novel Dandelion Wine in 1957, the dark fantasy Something Wicked This Way Comes in 1962, and the fictionalized memoir Green Shadows, White Veil in 1992. He also wrote and consulted on screenplays and television scripts, including Moby Dick and It Came from Outer Space. Many of his works were adapted into television and film productions, as well as comic books. Bradbury also wrote poetry, which has been published in several collections, such as They Have Not Seen the Stars in 2001. And also, Akarshita Tori Amos was born on this day in 1963. She's an American singer, songwriter, and pianist. She's a classically trained musician with mezzo-soprano vocal range. Having already begun composing instrumental pieces on piano, Amos won a full scholarship to the Peabody Institute at Johns Hopkins University at the age of 5, the youngest person ever to have been admitted. And she was the lead singer of the short-lived 1980s pop group Why Can't Tori Read? And let's listen in to our hit song, Conflict Girl.
Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us the yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता सिंह और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।